नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रखने और इसके प्रचार तथा विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट।
ये योजना मई 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये निर्णय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। ये योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1000 से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है, जो लाभार्थी के योगदान पर निर्भर करती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8,66,00,000 से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालत अरावली पर्वतमाला में खनन और इससे जुड़े पहलुओं की व्यापक और समग्र जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगा। न्यायालय ने कहा कि अवैध खनन से अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई की। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय के आदेश में तार्किक विसंगतियों और गैर मान्यता प्राप्त श्रेणियों के अंतर्गत नामों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने को कहा गया है। साथ ही प्रभावित मतदाताओं की परेशानियों की सुनवाई और निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने का अवसर प्रदान किया गया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के सभी जिला प्रशासन अधिकारियों को SIR के दौरान कड़ी कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें भारत और तालिबान के बारे में उनके झूठे बयानों को दर्शाया गया है। सरकार ने कहा है कि इसे पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि रक्षा मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। भारत ने नेपाल को चुनाव संबंधी सहायता की पहली किश्त हस्तांतरित की। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने ये सहायता नेपाल सरकार के अनुरोध पर वहां के गृहमंत्री ओम प्रकाश आर्याल को सौंपी। ये सहयोग दोनों देशों के बीच मौजूद बहुआयामी और बहुक्षेत्रीय विकास साझेदारी को दर्शाता है। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि आज विजय चौक पर होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के पूर्वाभ्यास के कारण नई दिल्ली के कुछ हिस्सों में यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। विजय चौक पर शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक के लिए यातायात बंद रहेगा। वहीं कृषि भवन से विजय चौक की ओर रायसीना रोड पर भी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पूर्वाभ्यास के दौरान दारा शिखो रोड, कृष्णा मेनन मार्ग और सुनहरी मस्जिद से आगे विजय चौक की दिशा में यातायात की अनुमति नहीं होगी। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें और रानी झांसी रोड और मिंटो रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह और राजस्थान में बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में आज ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने कल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में गरज चमक और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सुबह और रात के समय भी घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज प्री क्वार्टर मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा, जबकि पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत का मुकाबला चीनी ताइपे के चाउ टीएन चेन से होगा। वहीं महिला सिंगल्स में दो बार की ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु का मुकाबला डेनमार्क की लाइन निकजफिल्ड से होगा। वहीं पुरुष डबल्स में भारतीय जोड़ी अर्जुन मदाथिल रामचंद्रन और हरिहरन अमस्कारुनन का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी टी काइवोन और मैन वेई चोंग से होगा। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम यूपी वॉरियर्स का सामना गुजरात जायंट से होगा। वडोदरा के कोरांबी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने नागपुर में 5 T20 मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 48 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।